عيلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوءا وتمضيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والسامعين وناظرين، تربیت و تعلیم کے عنوان سے یہ مجالس عشر حسنین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سارے نبیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی تربیت فرمائیں اور انہیں تعلیم دیں. اور یہ آیت سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، جس نے اپنے پیارے نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ نورانی آیتوں سے مومنین و مسلمین کے دلوں کو نورانی فرمائیں، ویزکیہم اور ان کے نفسوں کو پاک فرمائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں قرآن کریم کا بھی علم دیں اور حکمت کا بھی علم دیں. اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے. عزیزو، میں نے عرض کیا تھا دو مجالس میں کہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ اصل فاؤنڈیشن ہے. یہ جتنی طاقتیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، یہ عقیدے کے کنٹرول میں ہیں، انڈر چلتی ہیں. سائیکولوجیکلی بھی، کانشس ہو یا سب کانشس ہو، برین ہو یا دل و دماغ ہو، یا آنکھیں ہوں یا زبان ہو یا ہاتھ ہو، یہ سارے اعضا جو ہیں یہ عقیدے کے ماتحت ہیں. اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں تو واقعاً یہ تمام اعمال، تمام حرکات، تمام گفتار انسان کی بیہودہ ہو جاتی ہے اور باطل ہو جاتی ہے. لہذا قرآن نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے عقیدے کو. اگر عقیدہ درست ہے، آپ کا عمل درست ہے. اگر عقیدہ درست ہے، آپ کی زندگی درست ہے. جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ غم جو ہے یہ باہر کی چیز ہے، یہ خوشیاں باہر کی چیزیں ہیں. جو خوشیاں ہم ایک کیک کی طرح سمجھتے ہیں، ایک کیک خرید کر آ جائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، اسی طرح سے خوشیاں باہر کی چیزیں ہیں. اگر ہمیں پیسہ ہوتا تو ہم خوشیاں خرید سکتے تھے. یہ غلط کانسیپٹ، غلط عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ زندگی بھر ڈپریشن میں رہتے ہیں. یہ زندگی بھی برباد، آخرت کی زندگی بھی برباد. دیکھیے، خوشی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ایک وسیع لفظ ہے، بلیو جسے انگریزی میں کہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں، ایک تو قرآن میں پروردگار عالم اپنے خالق و مالک کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، خود اپنی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ اپنے ذات کے بارے میں عقیدہ اتنا اہم ہے کہ پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سبحان اللہ. اب آپ نے دیکھا بلیو خدا کے بارے میں کیا ہے، آپ کا بلیو اپنے بارے میں کیا ہے، آپ کا بلیو کائنات کے بارے میں کیا ہے، آپ کا بلیو جو ہے وہ خوشیوں کے بارے میں کیا ہے، خوشی کیا ہے، غم کیا ہے. آج لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، और जिंदगी में डिप्रेशन की वजह से लोग खुदकुशी करके दुनिया आखरत को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत अहम मसला है अजीजान गिरामी, जिस पर आज हमें गुफ्तगू करनी है। देखिए ये भी अकीदे से ताल्लुक रखता है। हम समझते हैं कि खुशियाँ बाहर की चीज़ है, नहीं, खुशियाँ बाहर की चीज़ नहीं है, ये आपके अपने अकीदे की चीज़ है। खुशियों का ताल्लुक भी आपके अकीदे से है और इसी तरह से परेशानियों का ताल्लुक भी आपके अकीदे से है। अकीदा बहुत अहम चीज़ है, इसे मामूली ना समझें, चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप गैर मुसलमान हो, लेकिन सारा दारोमदार आपके अकीदे पर है। सलवात पढ़ दें, जो मोमिन सुन रहे हमारे साथ इंशाल्लाह इमाम ज़माना की खुशनूदी के लिए सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बस लोग कहते हैं कि देखिए अगर मुझे $1 मिलियन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये समझते हैं कि खुशियां पैसों में है। बाज़ लोग कहते हैं अगर मैं फलां मुल्क का वजीर बन जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये समझते हैं खुशी का ताल्लुक वजारत से है। बाज़ लोग कहते हैं अगर फलां जगह पर मेरी शादी हो जाती तो मैं बहुत खुश हो जाता। ये लोग समझते हैं खुशी का ताल्लुक शादी से है। बाज़ लोग कहते हैं अगर हम ये डिग्री हासिल कर लें तो हम खुश हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी ये भी गलत अकीदा है। ये गलत अकीदे की वजह से ये लोग समझते हैं कि ये खुशी एक्सटर्नल चीज़ है और ख़ुद ही खुशियों के लिए ये दीवार खड़ी कर देते हैं। ये जो अगर की कंडीशन है ना कि अगर $1 मिलियन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वजीर हो जाए तो, यानी ये इस वक्त खुश होना नहीं चाहते, ये खुशियों के लिए एक बंद खड़ा कर देते हैं, एक बैरियर खड़ा करते हैं अगर का। खुशी आज आपके बहुत नज़दीक है, खुशी का ताल्लुक अभी सुनेंगे कि आपसे बहुत नज़दीक है। जैसे परवर आलम कहता है कि मैं शाहरग से ज्यादा करीब हूं, ए बंदे नादान बदनसीब, खुशियां तेरी शाहरग से ज्यादा करीब है। तू समझता है कि मैं $1 मिलियन हासिल करूं फिर खुश हो जाऊंगा। अब जिनके पास $1 मिलियन है उनसे जाके पूछें कि वो डिप्रेशन में क्यों है। जो वजीर बन चुके हैं उनसे जाके पूछें कि जनाब आपका क्या हाल है, क्यों आप जा रहे हैं माहिर नफ्सियात के पास, आप क्यों डिप्रेशन में हैं। ये सब नादानी है इंसान की। ये अकीदा गलत होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। वो कहते हैं जनाब ये डिग्री मिल जाती तो कितने प्रोफेसर जो हैं इन्होंने खुदकुशियां कर ली। अजीजों खुशी आपके नजदीक है, खुशी का ताल्लुक आपके अकीदे से है। अब देखिए खुशी क्या होती है। आपने अकीदा बना लिया कि ये पैसा मेरे लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन माय लाइफ इज मनी, पैसा मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है। और जिस इंसान ने यह अकीदा बना लिया, यह अकीदा उसका बातिल है। वो उस बातिल अकीदे की वजह से ईमान भी बेचता है, वो पैसे की वजह से दीन भी बेचता है, वो पैसे की वजह से गैरत भी बेचता है, वो पैसे की वजह से औलाद भी बेचता है, वो पैसे की वजह से इज्जत नफ्स भी बेचता है, वो पैसे की वजह से सब कुछ बेचता है। और जब आखिर दम उसकी रूह निकलती है तो बगैर पैसे के खाली हाथ बर्बाद होकर इस दुनिया से जाता है, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद। अकीदा गलत था। वो समझ रहा था कि खुशी का ताल्लुक पैसे से है, उसके नजदीक मोस्ट वैल्यूएबल थिंग पैसा थी। अब आपने देखा खुशी का ताल्लुक किस चीज से है कि आपकी नजर में सबसे कीमती चीज कायनात में क्या है। और इंसान को जब वैल्यूएबल थिंग सबसे कीमती चीज मिलती है तो उसे खुशी होती है। अगर आपकी नजर में पैसा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है तो उसी वक्त खुश होंगे जब पैसा मिलेगा। एक इंसान ने कहा जब तक सिदारत न मिले, जब के वजारत न मिले तो मैं खुश नहीं होऊंगा, और वो उसी वक्त खुश होता है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि इसके पीछे कितनी मुसीबतें हैं, इस वजारत को बचाने के लिए मुझे कितनी चमचागिरी करनी पड़ती है, कितनी मर्तबा जलील होना पड़ता है, कितनी मर्तबा झूठ बोलना पड़ता है, कितनी मर्तबा झूठे वादे करने पड़ते हैं, कितनी मर्तबा अपना दीन बेचना पड़ता है, कितनी मर्तबा ईमान बेचना पड़ता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। जिसको मैं बहुत समझा था वो तो कुछ भी नहीं है। अजीज, इसी तरह से पहले ये डिसाइड करें कि आपका अकीदा के सबसे कीमती तरीन चीज आपकी नजर में क्या, वजारत है? ये आपकी नजर में सबसे बड़ा सरमाया है, ये तो जुदा होने वाला है, दुनिया में भी वजारत छिन जाएगी। क्या पैसा सबसे वैल्यूएबल थिंग है? क्योंकि जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा कीमती समझा उसके मिलने से ही आपको खुशी मिलेगी और उसके जाने से आपको गम होगा, परेशानी होगी, डिप्रेशन होगा। पैसा आने जाने वाली चीज है, हमेशा नहीं रहती। आपने देखा सद्दाम ने जब हमला किया था कुवैत में, जो अरबपति थे, मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर थे, उनकी करेंसी खत्म हो गई, कुवैत की करेंसी टॉयलेट पेपर बन गई, स्टेट बैंक पर कब्जा हो गया, वो खुद गदागर फकीर बन रहे थे। हमने खुद देखे दुबई में, कुछ खाने के लिए नहीं था, जो करोड़पति था। एक रात में ये हो सकता है, बीबीसी का बैंक उड़ गया, लोगों के बहुत पैसे थे, पैसे सारे चले गए। अब आपने देखा ये पैसे वो चीज़ है, दुनिया में भी छिन जाते हैं और मरने के बाद तो यकीनन छिन जाते हैं। अः इंसान जरा सोच, सबसे कीमती तरीन चीज तेरी क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग तेरी नजर में तेरा अकीदा क्या है? अकीदे को दुरुस्त कर जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी, अकीदे को दुरुस्त कर आखिरत दुरुस्त हो जाएगी, अकीदा गलत सारे अमाल गलत। अब जिस चीज को आपने मोस्ट वैल्यूएबल समझा सबसे ज्यादा, बाद लोगों की नजर में शोहरत मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, शोहरत अगर खत्म हो जाए तो जनाब उनको दौरे पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। अजीज, इस शोहरत से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? शोहरत एक ऐसी चीज है जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, एक ख्याली लज्जत है। अगर पूरी दुनिया में आप मशहूर भी हो जाएं, आपके वजूद में क्या इजाफा होगा, आपके अखलाक में क्या इजाफा होगा, आपके किरदार में क्या इजाफा होगा? और अगर कहने को है तो बद से बदतर, जलील से जलील तर, नजस से नजस तर लोग भी बहुत मशहूर हैं, मगर हदीस में दुनिया में बहुत मशहूर लोग हैं, मगर कयामत और इन फरिश्तों के सामने, नूरानी इंसानों के सामने, औलियाए खुदा के नजदीक उन्हें कोई नहीं वैल्यू, कोई नहीं जानता। और मरने के बाद इस शोहरत का क्या फायदा? अब आपने देखा बहुत सारे लोगों के यहां शोहरत की वैल्यू है और इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, शोहरत आने जाने वाली चीज है। ये डिसाइड उन्होंने नहीं किया कि दुनिया में, कायनात में सबसे वैल्यूएबल थिंग कौन सी है। तरबियत के लिए बहुत जरूरी है ये डिसीजन लें, ये समझें, कुरान की रोशनी में समझें, हदीस की रोशनी में समझें, फलसफे की रोशनी में, साइकोलॉजी की रोशनी में समझें कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दुनिया में क्या है। जब तक कि ये अकीदा नहीं समझेंगे जिंदगी कभी खुश नहीं रहेगी और आखिरत तो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। अगर यहां डिसाइड नहीं किया, ये अकीदे से ताल्लुक है। बहुत सारे लोग समझते हैं जनाब खूबसूरत तरीन अगर लड़की से शादी हो जाए तो मैं बहुत खुश नसीब हूं, फिर मुझे खुशियां मिलेंगी। और देखिए जनाब कितने लोग हैं उनके बीवियां खुश नसीब हैं, जाहिरन उनकी बीवियां खूबसूरत हैं, मगर वो कहते जनाब जाहिर खूबसूरत हैं। जैसे मौला अली फरमाते हैं, जिस औरत में किरदार में अखलाक नहीं है, जिस औरत में ईमान नहीं है, तो वो कितनी भी खूबसूरत हो वो एक सांप की तरह है। वो सांप जिसकी खाल बड़ी नर्म होती है मगर उसके अंदर जहर होता है। जिस औरत के अंदर अखलाक नहीं है, ईमान नहीं है, किरदार नहीं है, अमानत नहीं है, जितनी भी खूबसूरत हो मगर वो शोहर को डसती रहेगी, डसती रहेगी, डसती रहेगी, और 10-20 साल पहले ही शोहर को मार देगी डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से। लेकिन चाहे शक्ल सूरत ना हो लेकिन अखलाक है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, खिदमत गुजार है, इताअत गुजार है, यकीनन उस औरत से इसके लिए दुनिया आखिरत में सआदतें हैं। देखिए ये सारे अकीदे की बातें हैं और ऐसी गलतियां लोग करते रहते हैं, हुसन को देख कर शादियां करते हैं और न हुसन मिलता है, न सुकून मिलता है, न दीन मिलता है, न ईमान। अब आपने देखा हमारी सारी खुशियों का ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारी जात के बारे में, अपने जात के बारे में, कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है। अजीजों आइए कुरान से दर्स लेते हैं, कुरान बताएगा सबसे कीमती तरीन चीज तेरे पास क्या है। और यकीनन अगर तूने अकीदे को दुरुस्त कर लिया, असल कीमती चीज के पीछे तू चला तो तेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज को आपने वैल्यूएबल समझा वही आपका काबा है, वही आपका किबला है, आपका तवाफ हमेशा। जिन्होंने पैसे को सब कुछ समझा, देखो न नमाज की फिक्र न रोजे की फिक्र, वो पैसे का तवाफ कर रहे हैं, पैसा उनके लिए काबा है, पैसा उनके लिए सब कुछ है, सब कुछ पैसे के लिए बेच देते हैं। जिन्होंने इक्तदार को समझा सबसे वैल्यूएबल, वो इक्तदार का तवाफ करते हैं। इंसान ने जिस चीज को ज्यादा वैल्यू दी वही उसका सबसे ज्यादा महबूब बन गया। अज़ीज़ान गिरामी, आइए कुरान की तरफ चलते हैं कि ऐ अल्लाह की नूरानी किताब तू हमें हिदायत दे कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सरमाया क्या है, ताकि मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए। कहीं ये 60-70 साल की जिंदगी है, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, फिर कोई मौत के बाद आ नहीं सकता, कहीं मेरी दुनिया भी बर्बाद ना हो जाए, आखिरत भी बर्बाद ना हो जाए। ऐ अल्लाह की नूरानी किताब तू बता दे कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हकीकी मेरा सरमाया क्या है। तो सूरह मुबारक हश्र में आवाज आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल्तंज़ुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़दिन। अल्लाहु अकबर, क्या नूरानी आयत है, क्या नूरानी जुमले हैं। अगर कोई समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाएगी, गफलत से बेदार हो जाएगा, जहालत से इल्म में आ जाएगा, अंधेरे से नूर में आ जाएगा। क्या नूरानी आयत है, मा कद्दमत लिगदिन। ऐ इंसान, तेरा हकीकी सरमाया वो है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वो है जो मौत के झटके के बाद भी तुझसे जुदा ना हो। सुभान, अकल भी ये कहती है, अकल यही कहती है ना, कीमती तरीन चीज वो है जो मौत के बाद भी मुझसे जुदा ना हो। अगर जुदा हो गई तो मैंने जिंदगी जाया कर दी। मौत के बाद दौलत जुदा, मौत के बाद बिजनेस जुदा, मौत के बाद जमीन जुदा, मौत के बाद घर जुदा, मौत के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां जुदा, मौत के बाद बीवी जुदा, मौत के बाद इक्तदार जुदा, मौत के बाद शोहरत जुदा, मौत के बाद बच्चे जुदा। बताए इंसान, मौत के बाद वो कौन सी चीज है जो तुझसे जुदा नहीं होने वाली, और वही सरमाया है, वही मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है, वही कीमती चीज है, वही असल खुशियों का राज है। कि तू कुरान से पूछ कि तू गमगीन क्यों होता है, कि तूने नाकिस को कीमती समझा, तूने फानी को कीमती समझा, तूने गुजर जाने वाली लज्जतों को सबसे ज्यादा अहमियत दी, लिहाजा तू हमेशा परेशान, हमेशा डिप्रेशन, हमेशा टेंशन। आ जा कुरान से पूछ ले सबसे कीमती तरीन चीज क्या है, वो जो कभी तुझसे जुदा ना हो, कब्र में जुदा ना हो, मौत के बाद जुदा ना हो, बरज़ख में जुदा ना हो। मेरे मालिक, वो क्या सरमाया है, वो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स क्या हैं जो कभी मुझसे जुदा नहीं होंगी। अल्लाह ने कहा, जरा पढ़ मेरे कुरान को, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। खुदा कसम खा के कह रहा है, ए इंसान तू बड़े नुकसान में है। तूने फना को कीमती समझा, तूने मिट जाने वाली चीजों को मोस्ट वैल्यूएबल समझा। अल्लाह कसम खा के कह रहा है तू बड़े नुकसान में है, यहां भी खसारे में, यहां डिप्रेशन में रहेगा, यहां टेंशन में रहेगा, मजदूर मुगे एक हैवान की तरह दिन रात काम भी करेगा मगर सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तू खो गया है, तू सैराब में है, तू मेराज में है, तू समझ रहा है ये पानी है, वो पानी नहीं बल्कि वो सहरा है, वो धोखा है। असल क्या है तेरी दौलत, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वो है जो मौत के बाद उससे जुदा ना हो, खुशियों का राज ये है। खुदा कर वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। ऐ इंसान तू घाटे में है, तू लॉस में है, तू नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर तूने ईमान को हासिल कर लिया तू नुकसान में नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग क्या है, ईमान है। तेरी खुशियों का राज ईमान में है, तेरे सुकून का राज ईमान में है, तेरे सुकून का राज पैसे में नहीं, दौलत में नहीं। अजीज़ो ईमान किसे कहते हैं, हम सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, تو کیا اللہ ہمارے اس کہنے کو قبول کرتا؟ ہاں زبانی ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان کی تعریف قرآن نے بتائی, لا خوف علیہم. اللہ جہاں دل میں ایمان آ جائے وہاں اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. نہ بیماری کا خوف ہے, نہ فقر کا خوف ہے, نہ دنیا کے پروپیگنڈا کا خوف ہے, نہ ظالم بادشاہ کا خوف ہے, کس نہ ستمگر کا خوف ہے. جہاں خوف ہے وہاں خوشی نہیں ہے, جہاں خوف ہے وہاں سکون نہیں ہے. جہاں سارے خوف مٹ جائیں اسے ایمان کہتے ہیں. اللہ ایمان اسے کہتے ہیں جہاں ہر ڈر ختم ہو جائے. آج پریشانی کیوں ہے؟ لوگ ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ وہ خوشی دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ خوشی اقتدار میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ خوشی شہرت میں ڈھونڈ رہے ہیں. ٹینشن میں ہے, سونا نہیں, پریشانی, بیماریوں کے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں, اور 10-20 سال پہلے عمر ضائع کر دیتے ہیں. ایسے اعمال ہیں جس سے عمر کم ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا دار اسی طرح سے زندگی صبح شام نکلتے ہیں, بھاگ دوڑ محنت, مگر سکون کچھ بھی نہیں. اور وہی دولت کبھی ان کے ہی خلاف استعمال ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی, سب سے بڑی دولت ایمان ہے. ایمان کی نشانی ہے. اگر خوف ہے تو ایمان نہیں, اگر ظالم کا ڈر ہے تو ایمان نہیں, اگر پروپیگنڈا کا ڈر ہے, لوگ پروپیگنڈا کر لیں گے, یہ کر لیں گے, تو ایمان نہیں. ایمان کی شرط ہے لا خوف علیہم. مومنین اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سرکار رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. صلوات پڑھیں جو مجمع ہمارے ساتھ مختلف امام بارگاہ ہم یہ پروگرام پاکستان میں دیکھ رہا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. کیا فرمائے؟ فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے اور بے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بے ایمان ہر ایک سے ڈرتا ہے اور مومن خدا کے سوا کسی طاقت سے نہیں ڈرتا, کسی شخص سے نہیں ڈرتا, کسی گروہ سے نہیں ڈرتا. جو ڈر رہا ہے یہ ڈرنا دلیل ہے بے ایمان, یہ دلیل ہے نفاق کی, یہ دلیل ہے کہ ایمان کمزور ہے. جہاں ایمان آ جائے سائے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. عزیزو ایمان سرمایہ. اب آپ دیکھیے انبیاء کے مشن کو کیوں نقصان پہنچا, ان لوگوں کی وجہ سے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا. انبیاء نے حق ہر جگہ پہ, جو نبی آیا گاؤں میں آیا, حق کی آواز بلند کی, لوگ سمجھ رہے تھے. عقل ہے نا, دین اور عقل میں کوئی تضاد نہیں ہے, بات سچی کہہ رہے ہیں. مگر بادشاہ ہے, مگر وہ ظالم ہے, مگر وہ ٹولہ بڑا خطرناک ہے, وہ فلاں آدمی بڑا خطرناک ہے, فلاں لوگ بہت خطرناک ہیں. اگر ہم نے نبیوں کا ساتھ دیا تو ہماری گردن اڑ جائے گی, اگر نبیوں کا ساتھ دیا ہمارے بچے مار دیے جائیں گے, اگر نبیوں کا ساتھ دیا تو کیا ہوگا, ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. یہ طاقتور ہے. یہی خوف, یہی امر بالمعروف نہ کرنا, امر بالمعروف کرنے والے نبی کا ساتھ نہ دینا, سبب ہوا کہ نبی مظلومیت میں بے دردی سے مارا گیا اور یہ لوگ خاموش رہے. اور اسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے آئے, اور تنہا نہیں آئے, بچوں کو لے کر آئے, جوانوں کو لے کر آئے, بوڑھوں کو لے کر آئے, خواتین کو لے کر آئے, تاکہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جرت دیں, غفلت میں رہنے والے مسلمانوں کو بیدار کریں, بزدلوں کے دلوں سے بزدلی کو نکال دیں اور ان کے دل میں شجاعت کے جوہر بھر دیں. الحمدللہ امام حسین علیہ السلام اس مشن میں بہت کامیاب ہوئے. اور آپ نے دیکھا جو یزید کے ظلم پر خاموش تھے کتنی تحریکیں اٹھیں. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک سادات کو پہنچنے میں दिन नहीं महीने लगे हैं जो तहकीक की गई है, और उसकी वजह यह थी लंबा रास्ता अख्तियार किया गया। लोग अब डर खत्म हो चुका है, हाँ अब गैरत इस्लामी जाग चुकी है कि जब अमर बिल मारूफ अली असगर अपनी खामोश ज़बान से कर सकता है और अपनी गर्दन पर तीर बर्दाश्त करके बाबा की हिमायत कर सकता है, हम तो जवान हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो गुलाम हैं, हम तो खादिम हैं। अल्लाह अकबर, अगर अमर बिल मारूफ करना इतना अहम है, अली अकबर हम शिकले पैगंबर अपने सीने पर बर्ची को बर्दाश्त कर सकता है, तो हम कैसे आजादार हैं कि देख रहे हैं जुल्म हो रहा है, देख रहे हैं ना इंसाफी हो रही है, चुप रहना इतना ही जुर्म है। जालिम के जुल्म पर चुप रहना जालिम की मदद करने के बराबर है। लोग उठे हुसैन अलैहि सलाम के खुतबों की वजह से, अब्बाओ से अलमदार अगर बाजुओं को कटवा के अमर बिल मारूफ कर सकता है तो हम इन बाजुओं को क्यों नहीं कटवा सकते। करबला वालों ने जुर्रत दी है, करबला वालों ने शजाअत दी है, वरना यजीद ने बहन मां का निकाह हलाल कर दिया था, वरना यजीद ने शराब को हलाल कर दिया था, वरना यजीद ने जुआ को हलाल कर दिया था, वरना यजीद ने गाना नाच डांस सबको हलाल कर दिया था। ये हुसैन अलैहिस्सलाम थे, 72 का खून था, नहीं नहीं उससे भी बढ़कर। जब लोगों ने सुना अमर बिल मारूफ जिंदा करने के लिए नबी की नवासियां बाजार कूफे में आ गई हैं, अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पत्थर बर्दाश्त करके अमर बिल मारूफ कर सकती है, आए हाय हम जवान पैगंबर को क्या मुंह दिखाएंगे। उठे लोग उठे, खवातीन उठी, बच्चे उठे, अगर सकीना बाबा के मिशन अमर बिल मारूफ को कामयाबी के लिए तमाचे खा सकती है, काम जख्मी करवा सकती है, घर घर में इनकलाब आया, घर घर में शुजात आई, घर घर में ईमान आया, यजीद का खौफ खत्म हो गया और खुदा का खौफ आ गया। अजीज ये मकसद हुसैन है, अमर बिल मारूफ जिंदा। अगर मकसद को इंसान भूल जाए तो उस इबादत का सही अज्र नहीं मिलेगा। अज्र तब मिलेगा जब मकसद हुसैन को समझ के रोएं। तो प्यारे नबी की प्यारी हदीस है, जिसने मकसद को समझ के रोया वो एक आंसू गिरा दे उस पर जन्नत वाजिब। लेकिन मकसद को ना समझे, दिन भर रोता रहे, बल्कि उल्टा मकसद के खिलाफ काम करे। देखिए शैतान यही करता है। तवाफ काबतुल्लाह का हजरत आदम से शुरू हुआ, इबादत थी, इश्क खुदा था, उसी को उसने बदल दिया शैतान। वही तवाफ नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अब जिनसी और हैवानी लज्जत में बदल गया कि लोग मर्द औरत नंगे होकर तवाफ करते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं कि एक सुन्नत इलाही को शैतान ने कैसे बदल दिया। इसीलिए हर अमल करने से पहले हजार हजार बार सोचिए जो अमल कर रहा हूं वो कुरान के मुताबिक है, आयत है मेरे पास, हदीस है मेरे पास, अकली दलील है, मंतकी दलील है। ऐसे अमल न करें अजीजो, कोई भी अमल बगैर तहकीक न करें अजीजो। आबाहुम फहम गाफिलून, ये बातिल अकीदा है, बाबा ने किया तो मैंने किया, दादा ने किया तो मैंने किया, चचा ने किया, ये शैतान का अकीदा है, ये रहमान ने अकीदा नहीं सिखाया। लिहाजा जो भी अमल करें, शिया हो सुन्नी हो, अजादारी करें, हज करें, नमाज पढ़ें, जो भी दलील रखते हो, बगैर दलील के अमल की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बाबा ने किया मैं कर रहा हूं। और शैतान यही करता है, एक अमल खालिस होता है अल्लाह के लिए तवाब, उसको बदल दिया शैतान ने अपनी इबादत में। लिहाजा आज भी हम देख रहे हैं कि यही आज भी शैतान मरा नहीं है, शैतान और शैतान परस लोग आज भी रहेंगे। खात्मा तब होगा जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तब तक शैतान और शैतानियत रहेगी और कुल्लन कायनात से खत्म नहीं होने वाली। यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद अमर बिल मारूफ। और एक जगह पर जनाब कहा गया कि ये मजलिस है हुसैन में और ये नमाज का जिक्र हो रहा है, ये कैसी मजलिस है। अब आप देख रहे हैं कि मकसद को कत्ल किया जा रहा, ये ऐसे लोग भी हैं सादा लोगों को भटकाने के लिए कि जी मजलिस में तो सिर्फ फजाइल अहले बैत और मसाइब अहले बैत होते हैं, ये मौलाना क्या नमाज करें, पढ़ो रोजे रखो, कुरान पढ़ो, दुआ, ये मसाइल तो मजलिस से थोड़ी कहते हैं। मजलिस उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ फजाइले अहले बैत हो। अब देख रहे हैं कि मौला हुसैन की अजादारी है जिसका मकसद है अमर बिल मारूफ जिंदा करना, मगर उसी अजादारी उसी मजलिस के जरिए से मकसद हुसैन को कत्ल किया जा रहा है। ये हर जमाने में हुआ है कि इबादत का मकसद खत्म हो जाए, खुदा की इबादत कई मकामात पर कई मजाहिब में उसका मकसद खत्म कर दिया। ये शैतान की यही चाल होती, सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है, थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा कर दूं, जितना तेजी से आएगा दूर चला जाएगा। हमने इस बेचारे भटके हुए इंसान को जो आया था किसी के शैतानी शख्स की चाल में गुमराही में, मैंने कहा भाई आप रसूल खुदा को तो मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली को तो मानते हैं, हाँ इमाम हसन हुसैन को भी मानते हैं, पंतन पाक को मानते हैं, ठीक। मैंने कहा नहजुल बलागा उठाइए, ये जो खुतबात हैं ना ये मौला अली ने मजलिसें पढ़ी हैं मिंबर पर, आप उठा के देखिए मौला अली ने क्या पढ़ा, जो मौला अली ने पढ़ा है वो हम पढ़ रहे हैं, फिर तो सही है। मौला अली ने जहां भी खुतबा दिया, कोई खुतबा बताइए जहां तकवा का जिक्र ना हो, जहां खौफ खुदा का जिक्र ना हो, जहां इबादत का जिक्र ना हो, अल्लाह की हमद सना से शुरू करते हैं, अपने फजाइल भी बयान किए हैं, रसूल खुदा के फजाइल भी बयान किए हैं, मगर कौन सा खुतबा है जिसमें अमर बिल मारूफ का हुक्म ना हो, और कुरान की कौन सी आयत है जिसमें हिदायत की तरफ इशारा ना हो, अमर बिल मारूफ की तरफ हुक्म ना हो या इशारा ना हो। कुरान सरासर हिदायत है, सरासर अमर बिल मारूफ है, और मौला हुसैन की जियारत तो आप पढ़ते हैं ना, जियारत में क्या पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका कद अकमत सलात, मौला हुसैन आपकी शहादत का मकसद है कि नमाज कायम करो, कीते नमाज का जिक्र ना करो। देख रहे हैं किस तरीके से गुमराह किया जाता है बाद बेचारे सादा लोगों को, मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर किया जाता है कि बस मजलिस सुनो, कोई जरूरत नहीं कि नमाज पढ़ो। अस्तग़फिरुल्लाह, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, इस कुरान की आयत का क्या करोगे, कुरान कहता है अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तुम मुशरिक हो, तुम नजिस हो, तुम्हारा खाना तुम्हारा बोलना तुम्हारा बैठना तुम्हारा जिंदा रहना निजासत से खाली नहीं है। आप देख रहे हैं हर जमाने में गुमराही रहे, अकीदे को गलत कर दो ताकि पूरी बंदे की मेहनत बर्बाद हो जाए। अहले बैत की मजालिस सुने, मौला हुसैन के खुतबे सुने, करबला में मौला हुसैन ने खुतबे पढ़े, इमाम हसन की मजलिस सुने, हर इमाम ने कहां बगैर अमर बिल मारूफ के मजलिस पढ़ी है। अजीजान गिरामी ये गहरी साजिश है, क्योंकि शैतान के मुंह पर तमाचा लगता है जब अमर बिल मारूफ होता है। और मौला अली का ये जुमला नहजुल बलागा में पढ़ें, फरमाते सारी इबादतें एक तरफ रख दो, सारी इबादतें नमाज एक तरफ, रोजा एक तरफ, हज एक तरफ, जकात एक तरफ, खुम्स एक तरफ, हत्ता के जिहाद फी सबीलिल्लाह एक तरफ, ये सारी इबादतें क्या हैं, पानी के एक गिलास के बराबर हैं। दूसरी तरफ अमर बिल मारूफ रख दो, वो दरिया के बहते हुए पानी की तरह है, समुंदर के पानी की तरह है। अब आप देख रहे हैं कि शैतान के गुमराह का अंदाजा क्या है, वो बात वही करता है मगर उसका एंगल बदल देता है, कहता है मजलिसे हुसैन करो मगर अमर बिल मारूफ न करो, तवाफ करो मगर नंगे होकर करो, खुदा के इश्क में न करो शैतान के इश्क में करो। शैतान का तरीका यही है, वो ये नहीं कहता कि इबादत न करो, इबादत करो मगर उसका तरीका बदल दो ताकि रूह इबादत खत्म हो जाए। जहां रूह इबादत खत्म हो गई शैतान का मकसद पूरा हो गया। सलवात पढ़ें जो मोमिन सुन रहे हैं हमारे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अजीजो बहुत होशियार रहने की जरूरत है, हर जमाने में इस तरह से हुआ है कि असल एंगल से शैतान बदल देता है। तो तरबियत के लिए पहला मरहला है अकीदा दुरुस्त, आपकी खुशियां ईमान के साथ है। और आगे बढ़ें व अमिलुस सालिहात, खुशियों पे शर्त न लगाएं, आज अभी अभी खुशियां आपके दामन में आएंगी। जैसे खुदा शहरग से ज्यादा नजदीक है, ऐ मोमिन ऐ मुसलमान तेरी खुशियां भी इतनी नजदीक हैं, सिर्फ तूने अकीदे को बदलना है। दौलत नहीं, दौलत फानी है, डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, पैसा नहीं, इसमें खुशी नहीं। कुरान में अल्लाह ने कसम खा के कहा ईमान, ईमान यानी हर खौफ डर दिल से निकाल दे, हर जगह पे अमर बिल मारूफ कर। अमर बिल मारूफ करने वाले का साथ जिसने नहीं दिया उसने अंबिया से खयानत की। अमर बिल मारूफ करने वाले के साथ अगर आप नहीं जाते तो इमाम हुसैन की मिशन से आपने खयानत की। ईमान दिल में पैदा करें, न किसी के प्रोपेगंडा का डर हो। कहते हाँ जी इनके अगर अमर बिल मारूफ कर दिया फिर जीना हराम हो जाएगा। खुदा पे ईमान नहीं, ला इला इल्लल्लाह दिल में नहीं है। खुदा कहता है लैसा बिज़ारिहिम शय, दुनिया की कोई शय तुझे नुकसान नहीं दे सकती जब तक कि मैं न चाहूं, जब तक कि मेरा इज़्न न हो। ये ईमान की कमी है। अज़ीज़ान हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा कर लेंगे, उनके बहुत सारे साथी हैं, वो बहुत बड़ा कबीला, ये सब बहाने हैं शैतानी। अमर बिल मारूफ हर मुसलमान पर वाजिब है अज़ीज़ान गिरामी। लिहाजा ईमान के बाद अमल सालिहात, इस वक्त जहां बैठे हुए खुशियां चाहते हैं दुरूद पढ़ना शुरू करें, अमले साले है कब्र में काम आएगा, कुरान पढ़ना शुरू करें। शर्त न लगाएं, अभी अभी खुशियां आपके दामन में आ जाएंगी, अभी परेशानियां चली जाएंगी। आपका अकीदा गलत है, आप समझ रहे खुशियां वजारत में है, दौलत में है, शोहरत में है, निजासत की शहवत में, यह अकीदा गलत है। खुशियां आपके शहरक से ज्यादा नजदीक है अमल सालेहात। अभी उठ के कुरान पढ़ दें, अभी जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद शुरू कर दें, देखें खुशियां कैसे नहीं आती हैं। इश्क रसूल पैदा करें, खुशियां कैसे नहीं आती हैं। वतवासौ बिल हक, और हक की तबलीग करें, खुशियां आपके दामन में आ जाएंगी। एक गुमराह इंसान को अगर आपने हिदायत दी, कितना बड़ा खजाना, कितनी बड़ी दौलत, क्या चाहते हैं दौलत कितनी चाहते हैं, $1 बिलियन हुकूमत कितनी चाहते हैं, अमेरिका की हुकूमत चाहते हैं, पाकिस्तान के सदर बनना चाहते हैं, क्या हुकूमत चाहते हैं। आइए प्यारे नबी से हुकूमत लें, अभी अभी एक लम्हे में हुकूमत मिलेगी, दौलत मिलेगी, अगर आइडियोलॉजी बिलीव दुरुस्त हो जाए। अजीजो ये वतवासौ बिलहक क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में तफसीर फरमाई है कि या अली खैबर, कोई बड़ी बात नहीं फतह करना, ए अली पूरी कायनात की दौलत तुझे मिल जाए, पूरी कायनात की। कहे तो अली को रहे लेकिन असल मुराद हम हैं, सारी उम्मत को बता रहे हैं कि पूरी कायनात की दौलत, बिलियनर से भी ज्यादा, दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाए और पूरी दुनिया के हाकिम बन जाएं, सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं, पूरी दुनिया के सदर बन जाएं। फरमाया उससे भी अफजल है, उससे भी बेहतर है एक गुमराह इंसान को अल्लाह का रास्ता दिखा दे। उठिए अभी अभी ये खुशियां, अभी आपको दुनिया की हुकूमत मिलेगी, दुनिया की दौलत, ये दुनिया की दौलतें मिट जाने वाली हैं, हुकूमतें मिट जाने वाली हैं, मगर अगर आपने किसी को हिदायत दी, किसी शराबी को हिदायत दी, किसी बदकार को हिदायत दी, किसी गुमराह को हिदायत दी, किसी दुश्मन खुदा और रसूल को दोस्त खुदा बना दिया, किसी को मस्जिद में लेकर आए नमाजी बना दिया, यकीन जानिए ये वो दौलत है जो कब्र में भी साथ जाएगी। पूरी दुनिया के हाकिम हो लेकिन कब्र में कोई फायदा नहीं, पूरी दुनिया की दौलत मगर खाली हाथ जाना पड़ेगा। असल दौलत वो है जो मौत के बाद भी जुदा ना हो, वो तबलीग इस्लाम में है। एक बंदे को मुसलमान कर दें, एक बंदे को मोमिन मुत्तकी कर दें, यकीन जानिए कब्र आपकी बहश बहश का बाग बन जाएगा, बाग कब्र कब्र नहीं रहेगी, बहश बन जाएगा। हाँ करोड़पति हो, पूरी दुनिया के हुक्मरान हो, मगर कब्र में ये नहीं देखेंगे कि ये बादशाह था इसको जरा आहिस्ता मारें, ये बादशाह था इसके यहाँ आग का अजाब न भेजो, नहीं नहीं कब्र में कुछ फायदा नहीं। ऐ नादान इंसान, जिंदगी जाया न कर, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। खुशियों का इंतजार न कर, खुशियां तेरे बहुत नजदीक है। असल तेरी फिक्र गलत है, असल तेरा अकीदा गलत है, असल तेरा बिलीव गलत है। खुशियों के बारे में मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स कुरान ने बताई, ईमान, अमल साले, व तवासो बिल हक, तबलीग इस्लाम, व तवासो बिसब्र। सब्र क्या है, ये सेल्फ डेवलपिंग, सेल्फ डेवलपमेंट है। अंदर अपने ताकत पैदा कर, कुव्वत पैदा कर, इरादे को मजबूत कर, तकवा को मजबूत कर, ये असल तेरी पर्सनैलिटी, पैसे से कोई कवि नहीं होता, सब्र से कवि होता है। और सब्र की तीन किस्में बताई, एक सब्र है मुसीबत, मुसीबत पर सब्र कर, और दूसरा सब्र है वाजिबात, जो भी वाजिब है वो तुझे ताकतवर बनाने के लिए है। जो भी अल्लाह ने अगर नमाज फजर वाजिब की है ताकि तेरा इरादा मजबूत हो, अगर खुदा ने हज वाजिब किया है, रोजा वाजिब किया है कि ताकि तू ताकतवर हो, तेरी पर्सनल इंक्रीजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट हो, और सेल्फ और तेरी जिंदगी तरक्की और मेराज की तरफ जाए, अल्लाह अकबर, ये इबादत का मकसद है। सब्र कर, और वतवासौ बिलहक वतवासौ बिसब्र, सब्र वो है कि गुनाह के सामने सब्र कर ताकि तू पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो जाए। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, ये है खुशियों का राज। अगर तुझे सेल्फ कंट्रोल नहीं तो तुझे कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। ये बहुत अहम नुक्ता है, जैसे आज दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियों में जहां रिसर्च हुई है कि सक्सेसफुल बनने के लिए, जितने दुनिया में बड़े सक्सेसफुल इंसान गुजरे हैं, बाद में हजार लोगों पर तहकीक की, बाद यूनिवर्सिटियों ने 500, 200, सब दुनिया में सबसे बड़े सक्सेसफुल फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, दुनिया में सबसे बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्कॉलर, इन सब के अंदर देखा, रिसर्च की उनकी सवान हयात को, कि सारे दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में एक चीज मुश्तरक है, वो है सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी वो खुद पे कंट्रोल रखते थे। जो नफ्स पे कंट्रोल न रखे, जो खुद पे कंट्रोल न करे, वो दूसरे पे क्या कंट्रोल करेगा? वो असल में बेचारा हैवान है। देखिए, हैवान को क्योंकि अकल नहीं, वो खाता है तो बस खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, कभी बेचारे हैवान का पेट फट जाता है क्योंकि उसे खुद पे कंट्रोल नहीं। अगर इंसान भी इतना ही खाता जाए कि बीमारिस्तान बन जाए, यानी अस्पताल बन जाए, सारी बीमारियां जमा हो जाए, शुगर भी है, हार्ट अटैक भी है, ये भी है, वो भी है, और इसका सबब क्या? ज्यादा खाना। मौला अली अलैहि सलाम का बहुत खूबसूरत जुमला है, फरमाते कब्रिस्तान में जाके अगर कब्रों में सोने वालों से पूछो कि भाई आप जल्दी यहाँ क्यों पहुँच गए, तो अक्सर जवाब देंगे ज्यादा खाने से। ये लोग हैं जिन्हें पेट पर कंट्रोल नहीं है, 10-20 साल पहले मर जाते हैं, जिन्हें पेट पर कंट्रोल नहीं है शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, जिन्हें पेट पे कंट्रोल नहीं है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, पेट पे कंट्रोल नहीं है क्या क्या बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अजीजान गिरामी, सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ डेवलप, सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अगर खुद पे कंट्रोल नहीं, अल्लाह अकबर, तो कुरान कहता उलाइक कल अनआम बल हुम अज़ल्लो, फिर तुझे खुशियां नहीं मिलेंगी, फिर तुझे डिप्रेशन ही डिप्रेशन मिलेगा, परेशानियां ही परेशानियां मिलेंगी। पहले ये कंट्रोल पैदा कर, खुद पे कंट्रोल पैदा कर, यही तो कामयाबी का राज है, यही तो खुशियों की चाबी है। अजीजान गिरामी, मिसाल के तौर पर सामने जनाब कोई भी स्वीट डिश, मिठाई आ गई, शेरनी आ गई, ठीक, बहुत अच्छा डिश आपको पसंद है, लेकिन लज्जत कितने दिन, कितने देर, दिन नहीं, चंद मिनट, जब तक मुंह में नवाला है लज़्ज़त, निकलने के बाद तो पता ही नहीं है क्या हमने खाया है, ठीक है। अब अगर अजीज़ हो, बहुत अच्छी शीरनी है, बहुत अच्छी मिठाई है, आप खाना भी चाहते हैं, भूखे भी हैं, कोई कहते मौलाना रुक जाइए, क्यों भाई खैरियत, इसमें जहर है, खाएंगे? हरगिज़। इस्लाम भी कहता ना खाओ, अकल भी कहती ना खाओ, मंतिक भी कहते ना खाओ, फलसफा भी कहता नहीं खाओ, क्यों बाबा? ये लज्जत कितने मिनट होगी? 2-4 मिनट, और 2-4 मिनट की लज्जत के लिए मेरी जिंदगी मुमकिन है 10 साल रहूं, 20 साल रहूं, मैं मर जाऊंगा। अजीजो, देख रहे हैं कि अक्ल ये कह रहा है कि छोटी लज्जत के लिए बड़ी लज्जत को बर्बाद न करो। इसी तरह से ये दुनिया की जिंदगी क्या है? बल तुसरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। कुरान कह रहा है दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं, ख्वाब है, ख्वाब है। आज सदर बनने के चक्कर में, वजीर बनने के चक्कर में, शोहरत की वजह से, दुनियादारी की वजह से, हैवानी लज्जतों की खातिर, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं, आखिरत को बर्बाद न कर, अपना दीन न बेच, ईमान न बेच। अल्लाह अकबर, ये कुरान दर्स दे रहा है। अभी अभी मिसाल सुनी आपने कि कोई अकलमंद नहीं है कि जो 5 मिनट की लज्जत के लिए पूरी जिंदगी को बर्बाद कर। مگر ہیں ایسے احمق. آپ جو لوگ ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ یہی جہالت کی وجہ سے, یہی شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے. دو چار منٹ کی لذت کی خاطر ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اعوذ باللہ من الذنوب التی تؤجل الفناء. لوگو, بعض گناہ ایسے ہیں جو عمر کو کم کر دیتے ہیں, ان میں زنا, ایڈلٹری, بدکاری, یہ گناہ ہے. عزیز, آج کتنے ملینز لوگ, یہ سب لوگ کیا ہیں جو ایڈ کے مرض میں مبتلا ہیں, سیلف کنٹرول نہیں ہے, اور 30 سال پہلے مر جاتے ہیں, اور بہت ہی بھیانک طریقے سے مرتے ہیں. اسی طرح سے کتنے قسم, 14-15 قسم کے مختلف کینسر میں لوگ مبتلا ہیں, یہ بھی وہی لوگ ہیں, سیلف کنٹرول نہیں ہے. تو جس طرح سے سیلف کنٹرول نہیں ہے, یہاں پر ہی گناہگار جہنم میں ہے. یہ عذاب نہیں تو اور کیا. کتنے سال گزر گئے, ابھی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوا, مرتے چلے جا رہے ہیں ملین لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, زانی کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, لیکن جب مرتا ہے تو 300 عذاب کے دروازے اس کی قبر میں کھل جاتے ہیں. ایک دروازے سے آگ آتی ہے, وہ بھی دنیا کی نہیں, جہنم کی آگ. ایک دروازے سے سانپ حملہ کرتے ہیں, وہ بھی دنیا کے نہیں, آخرت کے سانپ. وہ اجدہا اگر زہر کو پھینک لے, دنیا نابود ہو جائے. پھر ایک طرف سے بچھو آتے ہیں, دنیا کا بچھو نہیں, قبر کا بچھو جب ڈستا ہے تو گنہگار 70 برس تک تڑپتا رہتا ہے. عزیزو, یہ نادانی نہیں تو کیا. سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی, قبر بھی برباد, برزخ بھی برباد, قیامت بھی برباد. لہذا اب آپ نے دیکھا, اصل خوشیوں کا راز سیلف کنٹرول میں ہے. اور یہی آج سائیکولوجسٹ کہتے ہیں, یہی فلسفی کہتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اس ساری تحقیقات کا, اس ساری ریسرچ کا. کئی یونیورسٹیوں نے جب تحقیق کی ہے تو یہی نتیجہ نکلا ہے کہ جو سب سے زیادہ سکسیزفل لوگ ہیں, وہ ان کے اندر اتنا سیلف کنٹرول زیادہ ہے. یعنی 99% یور ہیپینیس, یور گلیڈنیس, یور سکسیس ڈیپینڈ آن یور سیلف کنٹرول. یعنی 99%, 99% آپ کی خوشیوں کا دار و مدار, آپ کی کامیابیوں کا دار و مدار, آپ کی زندگی کی آبادی کا دار و مدار, آخرت کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ سیلف کنٹرول پر ہے. کہ آپ کے اندر کتنا سیلف کنٹرول ہے. جتنا سیلف کنٹرول زیادہ ہوگا, امتحان میں دیکھیے, دو بچے ہیں, ایک کو کنٹرول نہیں ہے, امتحان ہونے والے ہیں, وہ فٹ بال کھیل رہا ہے, فیل ہو جاتا ہے. ایک کو خود پہ کنٹرول ہے, وہ گھومنا پسند نہیں کرتا, مجھے امتحان ہے, پڑھتا ہے تو وہ ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے. جس کو سیلف کنٹرول نہیں, وہ یہاں پر بیچارہ معمولی سی جاب کرتا ہے. یعنی اگر وہی جب وہ اسٹوڈنٹ تھا سیلف کنٹرول کرتا تو یہاں بہترین زندگی آرام سے گزارتا, دوسروں کی مدد کرتا. کیونکہ بچپن میں سیلف کنٹرول نہیں, اب اس کا سارا فیوچر 60-70 سال وہ بیچارہ مشکلات, اقتصادی بھی ہے, پریشانی بھی ہے, یہ بھی ہے, اور انجوائمنٹ نہیں ہے کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جنہوں نے یہاں پر سیلف کنٹرول نہیں کیا, جنہوں نے آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کیا, جنہوں نے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا. بہت ضروری ہے زبان پہ کنٹرول کرنا. اگر کسی نے غیبت پہ کنٹرول نہیں کیا, یقیناً یہ پھر زبان نہیں رہتی بلکہ جہنم کا دروازہ ہو جاتا. آج صرف غیبت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیوں بڑا گناہ ہے غیبت؟ واقعاً اگر کمپیئر کریں گناہان کبیرہ میں, سب سے خطرناک ترین گناہ. لوگ کہتے ہیں کیوں آخر؟ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ. لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہی کوئی بڑا نہیں, اٹھتے بیٹھتے 1000 مرتبہ غیبت کرتے ہیں, مسجد میں غیبتیں ہو رہی ہیں. مسجد میں کوئی بے غیرت, کوئی انسان ایسا بے غیرت نہیں جو مسجد میں جا کے زنا کرے, اور نہ کوئی اجازت دے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غیبتیں ہو رہی ہیں, لوگ سن رہے ہیں, مسجدوں میں سن رہے ہیں, امام بارگاہوں میں سن رہے ہیں. یہ شعور ختم ہو گیا غیبت کتنی بری چیز ہے. عزیز و, غیبت کے بارے میں حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, غیبت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا, اسے اعمال نامہ دیا جائے گا, دیکھے گا اس میں لکھا ہوا ہے تو نے شراب پی ہے, میں نے تو کبھی شراب نہیں پی. اس میں لکھا تو نے زنا کیا, اللہ اللہ میں نے تو کبھی زنا نہیں کی. اس میں لکھا تو نے جوا کھیلی, میں نے کبھی جوا نہیں کھیلی. کہے گا پروردگار یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی, یہ میرا اعمال نامہ نہیں کسی اور کا, میں نے کبھی نہیں شراب پی. اس میں نماز کی جگہ لکھا میں نے نماز, میں تو نمازی تھا. روزے کی جگہ لکھا تو نے کبھی روزہ نہیں رکھا, میں نے تو کبھی روزہ قضا نہیں کی. परवरदिगार मिस्टेक हो गई फरिश्तों से, मेरा नहीं। खुदा कहेगा नहीं, ये बदबख्त, ऐ बदबख्त बंदे, ये तेरा ही अहमाल नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कहेगा कैसे मेरे मालिक, का जिनकी तू गीबत करता था ना, तेरी इबादतें उधर चली जाती हैं और उसके गुनाह तेरे पास। अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ा कोई गुनाह है? वाकई जिना में ऐसा नहीं होता, किसी और गुनाह में नहीं होता, ये गीबत में, फकत गीबत में ये है। उसके गुनाह तुम्हारे पास आ जाते। अल्लाह अकबर, ऐसा क्यों है अजीज? सोचने की बात है कि गीबत सबसे बड़ा गुनाह क्यों है? किसी कत्ल भी कर दे तो ये नहीं होता कि हमारी नेकियां उधर चली जाए, उसके गुनाह। गीबत, फकत गीबत। उसकी वजह बताऊं, अंबिया को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, अंबिया हादी हैं, हमारे इमामों को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो गीबत से पहुंचा है। इसीलिए हुक्म है कि गीबत करने वाला तो गुनहगार है, मगर सुनने वाला उससे बड़ा गुनहगार। अभी हदीस जिसने नहीं सुनी होगी हैरान होगा कि मौलाना क्या कह रहे हैं। हकीकी सच्ची हदीस से, सही हदीस। गीबत करने वाले को एक गुनाह है, सुनने वाले को दो गुनाह है। वो कैसे? इसलिए एक तो गीबत सुन रहा है, ये गुनाह, और दूसरा उसे इनकरेज कर रहा है। अगर यही रोक दे, भाई तुमने आयत नहीं पढ़ी कुरान की, मुसलमान की गीबत करना मुर्दे भाई के गोश्त खाने के बराबर है, कुछ शर्म कर, मुर्दे अपने भाई का गोश्त न खा, मेरे सामने गीबत न कर, मेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वो फिर दूसरी जगह गीबत करने से डरेगा। लोग मजे ले ले के गीबत सुनते हैं, अच्छा फिर बताओ क्या हुआ, उसे और इनकरेज करते हैं। इनकरेज करने वाले ही गीबत सुनने वाले हैं। और गीबत सबसे बड़ा गुनाह क्यों है? क्योंकि अंबिया के मिशन को जो नुकसान जितना गीबत से मिला है किसी अमल से नहीं, यानी असलन इस्लाम को नुकसान, तबलीग इस्लाम को नुकसान जो मिला है वो गीबत से मिला। अजीज, गीबत सबसे खतरनाक है। जितने शैतान और शैतान परस्त थे वो अंबियाओं पर तोहमतें लगाते थे, गीबत करते थे। गीबत क्या है? तोहमत इससे बुरी चीज है। गीबत ये किसी के ऐब को बयान करना, अगर ऐब नहीं है बयान करते तोहमत है। ये लोग क्या करते थे? अंबियाओं पर तोहमतें लगाते थे, ये नबी नऊज बिल्ला जादूगर है, ये नबी नऊज बिल्ला ये बदकार है। हजरत मरियम पर तोहमतें लगाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाई। ये सारे शैतान परस्तों का काम है, अहल बैत पर तोहमत लगाई। आप देखिए वो मौला अली अलैहिस्सलाम जो एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ते हैं, उन पे क्या तोहमत लगाई? नऊज बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत के अली अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ते। अस्तग़फिरुल्लाह। और शाम में मशहूर था क्योंकि वो गीबत सुनते थे, वो मुजरिम थे, तहकीक नहीं करते थे। यानी मौला अली की शख्सियत को पामाल किया गया इन लोगों ने गीबत के जरिए से। तो जब मौला अली मस्जिद में शहीद हुए, हर शामी ने उंगली मुंह में डाल दी हैरान होके, हमने सुना है हजरत अली मस्जिद में शहीद हुए, हमने तो सुना था वो नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, दुनिया के सबसे बड़े नमाजी को उन जाहिलों ने गीबत सुनने की वजह से बगैर तहकीक के मौला अली जैसी हस्ती को, महबूब खुदा महबूब रसूल खुदा को बेनमाजी समझा। अल्लाह, इसलिए गीबत बड़ा। अंबिया पर जो भी जुल्म हुआ है गीबत और तोहमत के जरिए से हुआ है। अंबिया के आइम्मे मासूमीन अहल बैत के मिशन को जो भी नुकसान पहुंचाया गीबत और तोहमत से, और आज भी वो शैतान यही काम करते हैं। उलमा पर गीबतें, उलमा पर तोहमतें, यही काम है शैतानों का। नेक लोगों पर तोहमतें ताकि नेकी न बढ़े। जो नेकी फैलाने वाले हैं, जो कुरान सिखाने वाले हैं, जो इत्तेहाद का दावा करने वाले हैं, जो अहल बैत का हकीकी मिशन चलाने वाले हैं, लोग उनसे बदजन हो जाए तो खुद ब खुद दीन से दूर हो जाए। अजीजो, ये खतरनाक साजिश है, इसीलिए गीबत बड़ा। मैंने कहा दो चीजों ने अंबिया के मिशन को नुकसान पहुंचा, एक अमर बिल मारूफ न करना, और अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, बुद्ध बिद्दत से रोकना, और उसकी हिमायत न करना। अंबिया इसीलिए शहीद हुए, मौला हुसैन इसीलिए शहीद हुए। अगर जितने हाजी मक्के में थे खड़े हो जाते, जहरा का लाल बच जाता, अली असगर की गर्दन पे तीर न लगता, ये बुजदिली की वजह से था, ये अमर बिल मारूफ न करने की वजह से। जितने हाजी थे अगर उठ खड़े होते तो सानिये जहरा नबी की नवासी के सर से चादर न छिनती, अगर ये मुसलमान खड़े हो जाते तो यकीनन यजीद जुर्रत न करता कि 3 दिन के प्यासों के खेमों में आग लगा दे। एक सबसे ज्यादा अंबिया औलिया अहल बैत के मिशन को जो नुकसान पहुंचा है वो अमर बिल मारूफ न करने से और अमर बिल मारूफ करने वालों के साथ न देने से, और दूसरा गीबत और तोहमत, ये दो सबसे ज्यादा जहरीली तलवारें हैं जो आज भी शैतानों के हाथों में हैं। वो मीडिया के जरिए से, फोन के जरिए से, टेक्स्ट मैसेज के जरिए से, ईमेल के जरिए से यही जहर फैला रहे हैं। अजीजाने गिरामी होशियार हो जाइए, यही अंबिया के मिशन के दुश्मन हैं, यही मौला हुसैन के मिशन के दुश्मन हैं, यही लोग हैं इमाम जमाना के दुश्मन हैं जो दो काम कर रहे हैं, एक अमर बिल मारूफ की मुखालिफत और दूसरा गीबत तोहमत। अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने आज ये नेमत हमें अता की है हिदायत टीवी की शक्ल में। आप सब तावन फरमाएं, जिसके भी दिल में ईमान है, जिसको भी यहां से हिदायत मिल रही है उसका फरीदा है, शरई फरीदा है, अखलाक।
Easy at uswitch.com. Reports.
इतने पाकिस्तान में शहरों में लोगों ने डिश लगाकर इमाम बारगाह में ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ वक्त पर आते हैं और आप इस्तफादा करते हैं। और अजीजाने गिरामी, अहल बैत की विलादत शहादत मनाई जा रही है और अकीदे को दुरुस्त किया जा रहा है। इस वक्त इस टीवी की वजह से हर घर में इमाम बारगाह है, हर घर में इबादत है, हर घर में अजान है, हर घर में नमाज है। अगर सोचे मारिफत के साथ तो कितना सवाब मिल रहा जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भर, क्योंकि इमाम ज़माना मिशन ट्रस्ट की तरफ से हिदायत टीवी के लिए दौरे किए गए और लोगों को घर घर शहर शहर जाके बताया गया अपने इमाम बारगाह में डिश लगा कर ये प्रोग्राम देखें, और 2 कमेटियां बनाई गई और हर जगह हर शहर में ये कमेटियां बनाएं तबलीगी तालीमी, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए से आप बहुत सारे तरीक़ों से हिदायत टीवी की मदद कर सकते हैं। एक स्पॉन्सर मजलिसें करवाएँ, उससे भी सवाब का सवाब होगा, लाखों लोग फातिहा पढ़ेंगे। अच्छे प्रोग्राम भी आप भेज सकते हैं, इंशाल्लाह जब हमारे बर्मिंघम स्टूडियो में ये सिस्टम आ जाएगा तो हम हर शहर को मौका देंगे कि हम लाइव आपकी मजलिस यहाँ से दिखाएंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, और इंशाल्लाह आप भी इसमें लाइव हमारे साथ शरीक होंगे। और इसी तरीके से जैसे बच्चों के प्रोग्राम हैं और अच्छे जितने प्रोग्राम हैं वो आप यहाँ भेज सकते हैं, या वहाँ मोमिनीन पर मुसलमीन पर जहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और फितना फसाद हो रहा है वो आप खबरें दे सकते हैं ताकि हम सदाए एहतजाज बुलंद करें अगर किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है। ये सारे काम आप कर सकते हैं और तालीमी सिलसिले में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हिदायत टीवी की तरफ से आपको बेहतरीन प्रोग्राम दिए जाएंगे और बहुत जल्द बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसके मेंबर बने। पहले मरहले में तो हर इमाम बारगाह में, ये पहला हमारा मिशन है, हर इमाम बारगाह में इंशाल्लाह इसमें कोई चीज़ हराम नहीं आती, कुरान आता है, नहजुल बलागा है, सहीफ़ सज्जादिया के दरूस हैं, और माशाल्लाह ये दो उलमा ने किबला मौलाना अदील साहब ने, मौलाना आबदी साहब ने बड़ी जहमत की है, उनके साथ मोमिनीन ने भी बड़ी जहमत की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान वाले भी अपना हिस्सा लें और इसमें शरीक हो जाएं, हर तरीके से इसे आप मदद कर सकते हैं ताकि ये असल ज़मीना है, ये वाकई इसमें शक की गुंजाइश नहीं, ये आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं फरजंद जहरा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए, कि मीडिया के बग़ैर कभी भी ये सिलसिला हम फैला नहीं सकते। आज हज़ारों जो शकूक व शुबहात थे वो लोगों के दिलों से निकल गए हैं और इंशाअल्लाह और लोग इस कश्ती में आएंगे और सब लोग इस काफिले में शरीक होंगे اور انشاءاللہ ایک دن شیعہ سنی ہم سب مل کے امام مہدی علیہ السلام کے دستہائے مبارک ان کے ہاتھوں کو چومیں گے اور ان کی زیارت کریں گے اور پوری دنیا سے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے. اصل یہی طریقہ ہے, اصل پیغام دینے کا یہی ذریعہ ہے. اس ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ اصل محنت یہی کرنی ہے کہ دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں, دنیا سے ظلم ختم ہو جائیں, دنیا سے بربریت ختم ہو جائے, دنیا سے ٹیررزم ختم ہو جائے, دنیا سے نفرتیں ختم ہو جائیں, عداوتیں ختم ہو جائیں, فرقہ پرستی کی لعنتیں ختم ہو جائیں, قوم پرستی کی لعنتیں ختم ہو جائیں, دنیا بہشت کا باغ بن جائے. اور یہی ہر مسلمان کا خواب ہے. وہ تب ہوگا جب ہم سب مل کے اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے. شیعہ سنی سب مانتے ہیں, ہر ایک مانتا ہے, لیکن امام نے شرط یہ رکھی ہے, خدا نے بھی یہی شرط رکھی ہے کہ تم سب ایک ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر تم جمع ہو کر تمام مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والے مل کے دعا مانگتے ہو, خدا دعا قبول فرماتا ہے. اور دوسرا تقویٰ ہے کہ جب تمہارے اندر تقویٰ کا نور آ جائے تو یقیناً خدا تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. تو اس ٹی وی کے ذریعے سے دیکھیں دو پیغام مل رہے ہیں, تقویٰ کا میسیج بھی مل رہا ہے اور یونٹی کا بھی. کل میں نے عرض کیا تھا, دیکھیے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے دشمنان اسلام کو فائدہ ہوگا. آئیے اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ کل کے بعد ہمارے اہل سنت کے عالم کو ایک ایمرجنسی میں جانا پڑا, انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. اور انشاءاللہ جب اہل سنت بھی مل کے بیٹھیں گے تو سب سے جو اہم کام کرنا ہے وہ شیعہ سنی مل کے کر سکتے ہیں کہ جتنی غلط روایتیں ہیں, جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں کسی بھی مذہب کے کتاب میں, اگر مل کے بیٹھیں گے تو یقیناً ان کو ہم اپنی کتابوں سے نکال سکتے ہیں, تاکہ کوئی دشمن رسول, کوئی دشمن اسلام ایسی خبیث کتاب نہ لکھ سکے جیسے ہندوستان میں لکھی گئی تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, رنگیلا رسول. یہ کیوں لکھی گئی تھی عزیزو؟ یہ سب ہماری نا اتفاقیوں کا نتیجہ ہے عزیزو. مناظرہ ہونا چاہیے مگر اس طریقے سے جس سے مسلمان متحد ہوں, اس طریقے سے نہیں کہ نفرتیں پھیلیں. آئیے ہم مل کے بیٹھیں اور دیکھیں اگر کوئی روایت حدیث پیغمبر کی شان کے خلاف ہے, شیعہ کتاب میں ہے, سنی کتاب میں ہے, کسی بھی کتاب میں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ ہم نکال دیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمارے رسول کی عظمت کیا ہے. اور یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم مل کے بیٹھے. اگر ہم صرف اچھالتے رہیں دوسرے پر کیچڑ, آپ کی کتاب میں یہ, وہ کہیں گے ہماری کتاب میں یہ, تو جھوٹی حدیثیں ضعیف حدیثیں ہر جگہ پر ہیں. انشاءاللہ اس کا یہ بھی مشن ہے اور انشاءاللہ ہدایت ٹی وی اس مشن میں بھی خدا اسے کامیاب کرے. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ. ہم سب التماس سے دعا کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہدایت ٹی وی کے کامیابی کے لیے اور امر بالمعروف کے مشن کو بڑھانے کے لیے دعا کریں, اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں اور سب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویا علی مدد, خدا حافظ. فی ہائے ہائے زینب ہائے.